अब आगे अहले किताब का तذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے امت مسلمہ کو رغبت دلائی کہ تم اپنے دین کے لیے تن من دھن لگانے کی نیت کرو اور اس راستے میں اللہ کی پسند کے مطابق جیو. اب یہاں سے اہل کتاب کی کچھ سازشوں کا تذکرہ ہے. آیت 98 اور 99 میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو مخاطب کریں گے اور اس کے بعد آیت نمبر 100 میں مسلمانوں کو خطاب کیا جائے گا. اس کے پیچھے ایک خاص واقعہ بھی ہے. انشاءاللہ ہم ان آیتوں کا ترجمہ لے کر اس کو آپ کے سامنے رکھتی ہوں. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ, کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو. واللہ شہید علی ما تعملون, جبکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے. اور آیت 99, قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ, کہہ دیجئے کہ کتاب والو تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے. کس کو؟ من آمنا, جو ایمان لے آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی وجہ بتاتے ہیں, تبغونہا عوجا, تم اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہو. یہاں لفظ عوج کو سمجھ لیجئے کیونکہ یہ تھوڑا سا نیا لفظ ہے. عوج عین واو جیم سے ہے, ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں, کروکڈنس انگلش میں اگر آپ لکھیں گے. تو آپ دیکھیے کہ اگر اس کو آوجا پڑھے نا, عین پہ زبر, واو پہ زبر, جیم پہ زبر, اوج, تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ٹیڑھا پن جو آنکھوں سے دکھے. مثال آپ کو دیتی ہوں کہ جیسے یہ ریموٹ کنٹرول ہے نا, یہ اس وقت کیسا ہے؟ سیدھا نا. اور اگر میں یوں کر دوں تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ یہ ٹیڑھا ہے. تو یہ فرق آپ محسوس کر سکتے ہیں نا آنکھوں سے, یہ سیدھا ہے, یہ ٹیڑھا ہے. تو اوج ہوتا ہے وہ ٹیڑھا پن, وہ کروکڈنیس جو کھلی آنکھوں سے دکھے. تار ٹیڑھی کر لے, دیوار ٹیڑھی ہو, فزیکل کسی بھی چیز کا. اور اگر یہ عوج ہو جو اس وقت دکھ رہا ہے, عین پہ زیر, واو پہ زبر, تو عوج کہتے ہیں وہ کجی یا وہ ٹیڑھا پن جو آنکھوں سے نظر نہ آئے. مثلا عقل اور شعور میں جو ٹیڑھا پن آ جاتا ہے, دماغ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. تو یہاں کیا لفظ ہے؟ تبغونہا عوجا, اہل کتاب کی سازشیں کہ جس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا کمنٹ کیا ہے کہ تم اسلام کے بارے میں اتنے نیگیٹو سینٹنسز دیتے ہو کہ تمہارے دل کے اندر یہ خیالات چھپے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طرح سے مسلمان اپنی کتاب سے دور ہو جائیں. اور تب ہو نہ ہا, ہا کی ضمیر سبیل کی طرف ہے, ٹھیک ہے. یہ آیت علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی, عوام کو کتاب کی شکل تک نہیں دکھاتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ ان کے دور میں کتاب کا ترجمہ کرنا اللیگل تھا. یعنی جیسے آج قرآن پاک عربک میں ہے تو آپ کو دنیا کی شاید اب ہر زبان میں اس کا ٹرانسلیشن ملتا ہے, اور ہمارا گول ہونا چاہیے کہ جس زبان میں نہیں ہے اس میں ہم حصے دار بنیں, ٹھیک ہے. لیکن یہود جو تھے وہ ترجمہ نہیں کرتے تھے. جیسے ہندوؤں کی کتاب ویدا ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے. تو بالکل اسی طرح سے یہود کے علماء نے تورات کو اپنی کنسٹڈی میں رکھا ہوا تھا. عام لوگ اس کو صرف برکت کی کتاب سمجھتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کی دعوت شروع کی تو اس سے اپنے لوگوں کو مختلف طریقوں سے روکنا شروع کر دیا. آپ کی تعلیم کیا تھی؟ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل. اب یہ یہود کے علماء کے اوپر سیدھی سیدھی چوٹ تھی کیونکہ انہوں نے اس کو ایک قانون بنا دیا. تو لہٰذا پروپیگنڈے شروع کر دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو باہر جا کر الٹے سیدھے رنگ میں پیش کرتے. اور گول کیا تھا؟ تب ہو نہا ایوجا, کہ کہیں یہ دین غالب نہ آ جائے, لوگوں کو اسلام کی خوبی نہ دکھ جائے. یہود کے علماء نے عوام سے بہت سارے حقائق چھپائے ہوئے تھے, دنیاوی فائدے بٹورتے تھے, من گھڑت قصے سناتے اور اپنی مرضی سے کچھ کا کچھ کر کے دکھاتے, اور وہی باتیں کہ سمندن قلیل حاصل کرتے. ان کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ سچا دین پھیل گیا تو ہمارے سارے فائدے ختم ہو جائیں گے, کیونکہ ان کی شان بنی بھی تھی, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بننے لگی ان کے خیال میں. حالانکہ یہ حق کا راستہ تھا, اللہ کے نبی کی بھی کوئی اس میں شان نہیں تھی. ٹھیک ہے, اللہ کی بات کرنے والا چونکہ اللہ کی بڑائی کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ عزت دے دیتا ہے, لیکن اصل میں تو یہ اللہ کی تھی. تو لہٰذا وہ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے کہ آپ کی بولی بھی ہر بات پہ جا کے باہر تنقید کرتے تھے. نتیجہ کیا ہوتا کہ جو مسلمان آپ کی بات سنتے وہ ڈاؤٹس میں چلے جاتے, شک میں کہ پتہ نہیں ہم ٹھیک سن رہے ہیں کہ نہیں, پتہ نہیں اللہ کے نبی جو باتیں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان دو آیتوں میں اب ان کو کہنے کے بعد مسلمانوں کو کہتے ہیں या अय्युहल लजीन आमनो, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कौन थे? कल भी थे, आज भी हैं। खास तौर पे उस दौर में जो लोग थे उनकी तरफ इशारा कर दिया गया। क्या करो, अल्लाह ताला कहते हैं कि ए मुसलमानों, ए ईमान वालो, इन तुतियो फरीक मिन अल्लज़ीन ओतुल किताब, अगर तुम अहले किताब के एक गिरोह का कहना मानोगे, उनकी बात मानोगे, यरुद्दुकुम बादा ईमानिकुम काफिरीन, तो तुम्हें ईमान के बाद वो मुर्तद बना देंगे, तुम्हारा दीन खत्म कर देंगे। नतीजा क्या होगा कि तुम बेदीन हो जाओगे। और तुम इतने ना कदरे क्यों बन रहे हो इनके हाथों में, जबकि आखिरी आयत सबक की 101 अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं वकई फतकफुरून, और कैसे तुम कुफर करते हो, वन तुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, जबकि तुम्हें अल्लाह की आयतें सुनाई जाती हैं, वफीकुम रसूलुहू, और तुम्हारे बीच में उसका रसूल भी है, यानी तुम्हारे पास दिन रात कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, तुम्हारे अंदर अल्लाह का रसूल मौजूद है, जाती तौर पे बनफ्से नफीस अल्लाह के नबी वहां रहनुमाई के लिए मौजूद थे, आयतें पढ़ी जाती थी। और मदीना में उलमा यहूद का इतना असर था कि औस और खजरज के लोग इनसे मरऊब थे, जिसको आप आज इंग्लिश में कह लें कि इम्प्रेस थे, दिलों पे धाक बैठी हुई थी कि ये बड़े सूटेड बूटेड किस्म के आलिम है और ये तो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे लगते हैं, और अल्लाह के नबी तो सीधे सादे से बस सादी जिंदगी, आसान जिंदगी की बात करते हैं। लेकिन चूंकि इनके पास इतना इल्म नहीं था, औसर खसरे से अनपढ़ लोग थे, ना पहले कोई किताब उतरी, ना कोई शरीयत थी, ना कानून थी। यहूदी जो थे वो जिसको आप कह लें कि अंधों में काना राजा वाली मिसाल है, थोड़ा बहुत जानते थे, इल्म का रिवाज उनमें था, इसलिए उनका रोब बहुत था। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ये इल्म आम हो गया तो हमें तो कल कोई पूछेगा नहीं। और इन सारी आयतें जो भी हमारे सामने, इनके पीछे एक वाक्या है, ये सुन लीजिए कि अंसार के दो कबीले औस और खजरज, शुरू से हम सुनते आए हैं लेकिन अब आपको आदत हो जाएगी, कुछ बार और सुनेंगे तो नोट करेंगे कि औस और खजरज नाम के दो कबीले मदीना में रहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले। असल में ये दोनों एक ही दादा की औलाद थी, एक का नाम औस था तो एक का खजरज था, दो भाई, उनकी नस्लों से ये दो कबीले बन गए। नस्ल दर नस्ल इनकी लड़ाइयाँ चलती थी, बहुत ज़्यादा आपस में लड़ते थे। जंगे बुआस नाम की एक जंग नबी सल्लम की आमद से कुछ अरसा पहले ही ख़त्म हुई थी, जिसके बारे में आता है कि वो तकरीबन 200 साल तक जारी रही। इनकी नस्लों की नस्लें कट गई उसमें, लेकिन वही बात है जो मौलाना खाली ने कहा कि कहीं पानी पिलाने पे झगड़ा और कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। कहते हैं कि अरब इतनी लड़ाका कौम बन चुकी थी उस वक़्त तक कि अगर कभी किसी के खेत का कोई एक परिंदा उड़कर दूसरे के खेत के दरख्त पे बैठ जाता तो लड़ाई शुरू कर देते कि मेरे खेत का परिंदा तुम्हारे पास आ गया। मकसद जिन लोगों के पास नहीं होता तो वो अपनी जात में खो जाते हैं। फिर क्या हुआ, अल्लाह के नबी आए, आपने उनको अमन का पैगाम दिया। नबी सल्लम की तालीमात सरासर पीस वाली थी, अमन थी। ये दोनों कबीले आपस में शीरो शकर हो गए, इस्लाम की अखुवत कायम हुई, मोहब्बत आ गई, लड़ाइयाँ ख़त्म। अब ये बात यहूद को बड़ी खौलती थी, क्यों कि यहूद ना सिर्फ ये कि इन दोनों कबीलों के बीच में लड़ाइयाँ करवाते थे इधर की बातें उधर, बल्कि अपने हथियार बेचते थे। उनको पता था जब ये आपस में लड़ेंगे तो फिर हमसे हथियार खरीदेंगे, पहले जाके औस को खजरत के, खजरत को औस के खिलाफ करते। जब वो लड़ते तो ये उनकी मदद के बहाने उनके बड़े प्यारे बन के उनके पास आते, कहते अच्छा तुम्हें लड़ना लड़ो, हम तुम्हारा साथ देंगे, अच्छा हथियार चाहिए ले लो, बस इसकी किस्तें देते रहना, अपना कारोबार भी चमकाते, उनकी नज़रों में बड़े भी बन जाते। अब क्या हुआ, अल्लाह के नबी आए, आपने कहा प्यार अमन मोहब्बत चैन, वो लड़ाइयाँ ख़त्म। जब लड़ाइयाँ ख़त्म तो यहूद का कारोबार हो गया ठप, उनके एक तो हथियार नहीं बिक रहे, दूसरी बात यह है कि वो कहते थे कि ये तो अब नबी कोई बड़ा समझते जा रहे हैं, मैं तो पीछे हो गया। नतीजा क्या हुआ कि एक मौके पे जब मुसलमान, जहर ये दोनों कबीले जब मुसलमान हो गए तो एक महफिल में बड़ी मोहब्बत से, जैसे महफिलों में होता है, खा पी रहे थे, और सर खजरत के कुछ लोग थे, कुछ इधर से थे कुछ उधर से थे। एक शख्स था यहूदी जिसका नाम था शास बिन कैस, बूढ़ा था, मुसलमानों से इंतहा दर्जे का बुगज रखता था। जब उधर से गुजरा ना तो उनको आपस में प्यार मोहब्बत से खाते पीते बातें करता देख के जल के राख हो गया। कहेगा अच्छा जी, कल तक तो लड़ते थे, आज तो बड़ी मोहब्बतें और बड़ी बातें हो रही हैं। अब उससे बर्दाश्त ना हुआ, उसने कहा कि ऐसा करते हैं, कहते तो मैं इनकी लड़ाई कराता हूँ। उनकी महफिल में गया, बैठा, थोड़ी देर बातचीत की, बातों ही बातों में उसने बड़े सलीके से जंगे बुआस का किस्सा छेड़ दिया, जिसका जिक्र छिड़ा जैसे ऐसे ही कि आप बैठे हो तो कोई माजी की बात शुरू हो जाए। जब बात शुरू हुई तो जंगे बुआस में सबका क्या हाल था, लड़ाई झगड़े थे ना। इतना ज्यादा उसने उसको मुसलमानों के सामने पेश कर दिया कि औस और खजरज ये भूल गए कि अभी थोड़ी देर पहले हम खा पी रहे हैं, खुश हैं, मुसलमान हैं। वो माजी की जंग की आग उनके दिल पे लग गई और उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। ऐसे होता है ना, बच्चे खेल रहे होते हैं तो एकदम लड़ना भी शुरू हो जाते हैं। बचपन ही था, और अभी जाहिर है कि नया नया इस्लाम था, मदीना वाले अभी नए, इतने देर से तो मुसलमान नहीं हुए थे। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा अच्छा लो हम कोई कम है, उन्होंने कहा हम कम है, चलो भाई फिर लड़ाई को ताजा करते हैं। हर्रा नाम का एक मैदान भी नॉमिनेट कर लिया गया, मुंतखब किया कि चलो भाई जाके वहां लड़ाई करते हैं और देखते हैं बॉस जीतते हैं कि हजरत। करीब था कि मुसलमानों के दो गिरोहों के अंदर बड़ी सख्त किस्म की लड़ाई होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम गया कि अल्लाह के नबी उधर देखें क्या हो रहा है। फिर आप फौरन उस जगह पे पहुंचे और आपने बहुत दिलसोज खुतबा दिया। ये आयतें उस मौके पे नाजिल हुई कि व कैफ तकफुरून अमअन्तुम तुतला अलैकुम आयतुल्लाहि व फीकुम रसूलहू। क्या हो गया तुम्हें, अभी तक तुम्हारे अंदर जाहिलियत है, अल्लाह का रसूल मौजूद है, दिन रात किताब पढ़ते हो, अल्लाह ने तुम्हें आयतें दे दी और तुम ऐसे। बस जू ही अल्लाह के नबी की पुरदर्द आवाज सुनी ना, तो औस और खजरत को जैसे होश आ गया, फिर फूट फूट के रोए, एक दूसरे के गले लगे, प्यार किया, भाई हमें माफ कर दो कर दो। तो अल्लाह ताला कह रहे कि दुश्मनों के भड़काने पे दोस्तों से लड़ोगे। आज मुसलमान क्या करते हैं, आज क्या ये मुसलमानों का हाल नहीं? यही सारी बातें हमें यहाँ बताई जा रही हैं कि देखो तुम उनके जाल में ना फंसो, वो तो बुरा कर ही रहे हैं, उनके तो हालात अपने लिए जो हैं सो हैं। तुम ये देखो कि अल्लाह ने तुम्हें इतनी नेमतें दी। हम सब पर अपने ऊपर गौर करें तो अब 300 पारे तो हम भी पढ़ चुके हैं। क्या हमारी खानदानी लड़ाइयाँ होनी चाहिए, अब झगड़े लेन के देन के, सास के बहू के? मैं सोचती हूँ कि ये कभी हो ही नहीं सकता। सच्चा दीन आपके दिल में जाता है ना, तो आप कभी अपने नाम पे लोगों से लड़ाइयाँ नहीं करेंगे, कभी नहीं झगड़ेंगे। आज अगर हम मुसलमानों के ऊपर गौर करके देखें आज के हालात, क्योंकि इस पारे का पूरा थीम ये है कि आज के मुसलमानों के मसाइल, क्या आज उम्मत मुस्लिमा के साथ ऐसा हो रहा है कि लोग उनको आपस में लड़ाते हैं, झगड़ाते हैं और खुद पीछे मीठे बन जाते हैं? तो अल्लाह ताला क्या आज मुझे और आपको नहीं कह रहा कि इन तुतियु फरीक मिन अल्लज़ीन उतुल किताब, तुम अहले किताब की बातें मानोगे तो बताओ कि क्या तुम खैर से रहोगे? आज आप देख लीजिए कि मुसलमान खा रहे हैं और पी रहे हैं और सो रहे हैं और जाग रहे हैं, और उनकी जिंदगी ऐसे लगता है कि बस सब काम हो गए और दुश्मन हमारे खिलाफ प्लानिंग्स करते हैं। आज आपको पता है कि मुसलमानों की किताबों के सबसे ज्यादा जो तर्जमे हैं वो गैर मुस्लिम कर रहे हैं। कुरान का पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन नॉन मुस्लिम ने किया, वो हमारी किताबों को हमसे ज्यादा शौक से पढ़ रहे हैं। भला क्यों? इसी में से तो रेफरेंस ढूंढ के उन्होंने हमें पकड़ना है। और दूसरी बात है कि उन्होंने हमारी किताबों से निशानियां लेकर उन्होंने रिसर्च करनी है। उन्होंने देख लिया कि अल्लाह के नबी गए थे आसमान पे, सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। उन्होंने भी कहा जहाज बन सकता है, बना लिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह कहता है मैंने तुम्हारे लिए खच्चर भी बनाए, घोड़े भी बनाए और कई और सवारियां बनाऊंगा। यानी उनका दिमाग हमारी किताबों में दुनिया के लिए चलता है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम मुसलमानों का हाल क्या। अगर यहाँ बैठकर इल्म की इस महफिल में मैं आपसे ही ये पूछ लूँ कि ये बताइए कि कुरान तो चूंकि मारूफ है ना हमारे घरों में, सबको पता है 30 पारे हैं, 114 सूरते हैं, कुछ मक्की हैं। इससे आगे जाऊंगी तो हो सकता है फिर कुछ जवाब कम होने शुरू हो जाए, कितनी मक्की, कितनी मदनी, कौन सी किस मौसम की, उसका टॉपिक क्या है, इतनी डिटेल में ना दें। हदीस के साथ हमारा क्या हाल है, हम हदीस के ऊपर कितना गौर करते हैं? बुखारी का नाम सुना होगा, मुस्लिम का सुना होगा, मेरा नहीं ख्याल के सियासत्ता की सारी किताबों के नाम पूरे के पूरे हमें आते हों, उनको लिखने वालों के आते हों, कितनी जिल्दें हमें आती हों। और आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इंसाइक्लोपीडिया अल मुजम अल मुफहर्रिस लिल हदीस, यानी इंडेक्स ऑफ द वर्ड्स ऑफ द हदीस, नॉन मुस्लिम ने बनाया इस वक्त। 11 यूरोपियन कंट्रीज ने मिल के पैसा लगाया, 35 साल, 35 ईयर्स लगे, और उन्होंने अल्लाह के नबी की सारी हदीसों को ऑर्डर वाइज, जो इंडेक्स होता है ना किताबों के शुरू में, यानी आज आपने कोई हदीस ढूंढनी है ना, आप इनकी किताबों को जाके खोल के, तो आप हदीस किस मौजू की हदीस कहाँ किस किताब में, इन्होंने उसको सेव किया। हम सो रहे हैं, हम पढ़ भी नहीं सकते। आज हम दुनिया में भी ना रहे तो दीन के बिना रहे। तुर्की में कहते हैं कि लाइडन यूनिवर्सिटी में से वो किताब छपी थी कि जिसके अंदर नॉन मुस्लिम ने मुसलमानों के कुरान का तर्जमा किया। आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की इतनी बात की कि हजरत जैद जो उन्हीं के सामने पले बढ़े थे, 17 दिनों में उन्होंने हिब्रू लैंग्वेज सीख ली जब उनको मौका मिला कुछ यहूद के पास बैठने का। हम सीखते हैं लैंग्वेज, लेकिन हम उनका कल्चर भी सीख लेते हैं और हम उनके खराब चीजें सीखते हैं। हजरत अबू हुरैरा फारस से आए थे, फारसी जानते थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहा करते थे कि अबू हुरैरा मुझे फारसी सिखाओ। आपने एक मौके पे कहा आज शिकम दर्द, क्या तुम्हारे पेट में दर्द है, तो वो मुस्कुरा दिए कि अल्लाह के नबी आपको फारसी आती है या फारसी सीखना चाहते हैं। जो अल्लाह के नबी के पास आता था ना, आप उससे उसकी जुबान बोलते। हम आज तक इसी झगड़े में कि इंग्लिश बोलनी भी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, डॉक्टर बनना भी चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। याद रखिए ना इंग्लिश बुरी है ना अरबी अच्छी है, दोनों अल्लाह की जुबानें हैं। आप ये देखिए कि हम किस तरह से ये काम करते हैं। आज जो हम अपनी उम्मत के एक स्याह दौर को देखते हैं, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह स्याही छटनी शुरू हुई हुई है, लेकिन आप जरा सोचिए कि एक वो वक्त था कि जब स्पेन हमसे कितनी करीब है, शायद 2-2.5 घंटे की, मैंने सुना है कि ट्रेन पे उसका सफर है, कितना करीब है मुसलमानों की हुकूमत थी। दूर दूर से लोग अरबी सीखने के लिए वहां आते थे, और ईसाई शहजादे क्रिश्चियन जो इनके शहजादे थे वो जब स्पेन में आते थे तो वहां की कैलीग्राफिक और इस्लामिक आर्ट को महंगे दाम खरीदते। कहते हैं कि बाद सब वो तस्वीरें ला के उल्टी लगा देते थे, उनको पता ही नहीं होता था ये बिस्मिल्ला यूं लगानी थी या ऑपोजिट, लेकिन वो सिर्फ उसकी ब्यूटी से इम्प्रेस थे। उनके कपड़े, हम मुसलमानों के जो कपड़े, जो मर्द सोब्स पहनते हैं और जो ढीले ढाले चोगे होते हैं, ये जो इंग्लिश शहजादे हैं ये शौक में पहनते थे मुसलमानों को कॉपी करने के लिए। जैसे आज हम खैर से फटी पुरानी जीन्स पहनते हैं जिसमें जिस्म का कोई हिस्सा भी न छुपे। याद रखिए कि कौमों की मरूबियत इसी तरह जाती है। जब मुसलमानों ने इल्म से ताल्लुक तोड़ा, कुफार उन पे गालिब आ गए। अल्लाह ताला हम सबको आज के दौर में कह रहे हैं तुतीयु फरीक मिन अल्लज़ीन उतुल किताब। देखो सब नहीं, लेकिन एक गिरोह ऐसा मौजूद है कि अगर तुमने उनको देख लिया, उनके पीछे लग गए, उनकी ख्वाहिशों पे चले, तो यरुद्दुकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन, तुम्हें फेर देंगे, रद्द कर देंगे, तुम्हारी अकलें मार देंगे। आप देखिए किस तरीके से मुसलमानों को अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम्हारे पास कुरान की आयतें पढ़ी जाती। आज देखिए दुनिया का कौन सा मजहब है जिसकी बेसिस इस्लाम से ज्यादा स्ट्रांग हो, कोई मजहब नहीं है। क्रिश्चियनिटी में क्या है, सिर्फ मिथ, एजम्पशंस, जीसस गॉड, ट्रिनिटी, 3 in 1, 1 in 3, कुछ भी नहीं है उनके पास। आप दुनिया का कोई मजहब का नाम लेके देखें, उनकी बेस ही नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कोई एक आर्टिफिशियल पौधा लाए और हल्की सी थोड़ी सी मिट्टी खोद के ना उसके अंदर बस ऊपर से खड़ा कर दे। ये हैं दुनिया के मजाहब, और कितने भले भूले हैं। और इस्लाम आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरत इब्राहिम में, कलम तरा कई फदरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबा, क्या तुमने कलिमा तय्यिबा वाली मिसाल पढ़ी है, कैसे उसकी बुनियादें दिल में, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो इतनी बड़ी हकीकत है जिसने अरब वजम को हिला के रख दिया। बादशाहों के महल्लात के कंगूरे गिर जाते थे जब कोई अल्लाह अकबर की तकबीर कहता था। आज हमारा हाल क्या है कि हम गैर मुस्लिमों के लाइफ स्टाइल में आकर अपने भी ना रहे, जिसको लोग कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया इस वक्त। और ये रिवाइवल अब कौन करेगा, ये आज की मुस्लिम यूथ करेगी। जो बूढ़ों ने जो करना था कर चुके, अब वो दुआएं मांगे और माफियां मांगे अपने और अपने बच्चों को मकसद ना देने की। नमाज, रोजा, दीन, हज हमने किया और उसकी असल भी ना पहचानी। आप देखिए कि पूरा सबक कहाँ से एक लड़ी में पिरोया जाता है। पहली आयत लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून। मुसलमानों का आज सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अल्लाह के रास्ते में अपना आप, अपनी स्किल्स, अपनी पसंद नापसंद नहीं देना चाहते। बिल्कुल बची खुची जिंदगी, बचा खुचा वक्त, बची खुची चीजें अल्लाह के लिए। सच बताएं जब रात को बिस्तर पर जाने से पहले टूटी फूटी 5 नमाजें पढ़ते होंगे तो वो क्या नमाजें होती होंगी। अल्लाह को जरूरत है हमारी टूटी फूटी नमाजों की? क्या आज मुस्लिम यूथ जो इल्म हासिल करती है दुनिया का, मैं सबकी बात नहीं करती, आप में से तो शायद एक भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो चीज मेरे जहन में आती है और मैंने देखा है ऐसे लोगों को, फजर पढ़ के जाते होंगे लेकिन जोहर असर मगरिब घर आके ईशा के साथ पढ़ते हैं अक्सरियत, कुछ तालीम के नाम पे, कुछ जॉब्स के नाम पे। हालांकि ना तो स्कूल्स वाले रोकते हैं ना जॉब्स वाले रोकते हैं, और आप ऐसी जॉब को जूते की नोक पे रखें जो आपको नमाज नहीं पढ़ने देती, आप ऐसी पढ़ाई को पीछे कर दें जो आपको अल्लाह का हक नहीं देने देती। हर 45 मिनट के बाद अमेरिका में 15 मिनट की ब्रेक होती है, 15 से मुराद 15 या 7-8 मिनट जरूर है, लाजिम है। नमाज तो हमारी इससे भी कम में पड़ जाती है, सिर्फ बात यह कि दिमाग इसमें लगा रहे। देखिए कि अल्लाह तआला कितनी दफा कहते हैं ना हाफिज अल सलात, नमाजों की हिफाजत करो। हिफाजत क्या है? मिसाल है कि आपके पास गोल्ड है, आप क्या कहते हैं, मैंने यहां सुबह कर ली थी गोल्ड की हिफाजत? ये तो नहीं मतलब, गोल्ड हो घर में तो हर वक्त दिमाग लगा रहता है ना, गोल्ड गोल्ड पहना हो तो फिक्र होगी गोल्ड गोल्ड। जिस तरह किसी चीज की हिफाजत एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो नमाज की हिफाजत क्या है कि बंदे का दिल दिमाग नमाज में अटका हुआ है, घड़ी देख रहे हैं, अच्छा अभी इतना रह गया, इतना टाइम हो गया, अच्छा अभी इतनी देर है, उठ उठ के जैसे बंदे को वो कहते हैं ना घबराहटें तारी होती हैं, आज क्या हमारी नमाज ऐसी? और हम माँ बाप इस पे भी बड़े खुश हैं, चलो पढ़ तो लेते हैं ना, टकरे ही सही पढ़ तो लेते हैं ना, क्योंकि रूह नहीं है। लन तनालुल बिर, आज अगर आप अपने बच्चों को ये सबक सिखाना चाहती है ना, तो आप ये ना कहें कि पैसे दे दो, कहेंगे शुक्र हमारे पास कोई नहीं, जेवर तो है ही कोई नहीं, गोल्ड तो बच्चों के पास होता ही नहीं है, लेकिन आप बताएं कि क्या पसंदीदा चीजें जो हम अल्लाह के रास्ते में दे सकते हैं। ये नहीं कहा कि लन तनालुल बिर मिम्मा तो हिब्बून में, ये नहीं कहा कि मिम मालिन, माल तो थोड़े लोगों के पास होता है, मैं कहती हूँ वो लोग तो बच जाते हैं कि जिनके पास माल ही नहीं है, ख्वाहिश पे अजर मिल रहा है तो माल होता तो हो सकता है ख्वाहिश ही ना पैदा होती, राइट? असल चीज क्या है कि इंसान के पास क्या कुछ है, एक जरा लिस्ट तो बना के देखिए, फिर आप जाके सोचेंगे कि आज हम मुसलमान जो रोना ही रोते रहते हैं, पैसे कोई नहीं, माल कोई नहीं, घर कोई नहीं, जलजले बहुत है हमारे मुल्कों में, बिजली नहीं, 15 दिन के लिए जाना हमारी जान पे बनी होती है, यकीन करें लोग जिहाद पे जाते हुए इतना फिक्र नहीं करते थे जितना आज हम जो इन मुल्कों में रहते हैं आदि हो चुके होते हैं, हमें गम लगे होते हैं कि वहां जाएंगे तो कहीं हमें मक्खी ना खा जाए और कहीं मच्छर ना आ जाए और कहीं गर्मी और कहीं सर्दी, झूठ है कि सच है? जो अपनी छोटे बच्चों को साथ लेके जाते हैं, यानी बातें होती रहती हैं, वो जहन में रहती हैं कि वो कहती है मैं जब जाती हूँ ना तो जितना लगेज मेरे साथ अलाउड है मैं सिर्फ उसमें अपने बच्चों और अपने मियाँ और अपनी पसंद के खाने डाल के जाती हूँ, यानी यहाँ की स्नैकिंग, किसी को शैम्पू यहाँ का पसंद है तो वो इसके बाहर जी नहीं सकता, हाय वो ना मिला तो क्या होगा, बाल सफेद हो जाएंगे अगर वो शैम्पू ना मिला। कभी सोचिए, बिस्तरे तकिए तक तो मेरा हैले ले जाने को दिल करता है कि हमें उनके गद्दे भी नहीं अच्छे लगते, हमें उनकी गर्मी नहीं अच्छी लगती, कहीं हम हीटर कहीं गर्म, अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं कि देखो दुश्मन क्या कर रहा है। आप इन लोगों को देखें, इनकी जिंदगियां इतनी आसान है, लेकिन हम अल्लाह के रास्ते में अगर देखें तो सबसे पहले जिस चीज को आपने पेश करना है ना वो आपका अपना आप है, मैं अल्लाह को जो चीज आपसे और मुझसे चाहिए ना वो मैं चाहिए, मेरी जात। अल्लाह ने मुझे कितना कुछ दिया, अल्लाह के रास्ते में तकलीफें आए हंस दो, अल्लाह के रास्ते में भूख है स्माइल, प्यास है स्माइल, कुछ भी मुश्किल है कोई बड़ी बात नहीं है, लगाइए अल्लाह के रास्ते में, कहें मैं हूं क्या। मैं कहती हूँ किसी ने अगर अपनी औकात देखनी है ना तो वो बाथरूम में देखे, कि जब अपना भी नाक बंद हो बंदे का अपनी स्मेल से, पता नहीं लोग किस तरह बर्दाश्त करके वहां बैठे रहते हैं, क्योंकि इंतजाम जो अच्छे हैं कि हम एक फ्लश करेंगे सारी गंदगी साफ, अंदर सोच गंदी, इरादे गंदे, तरीके गंदे, काम गंदे, लेकिन हमें इसकी फिक्र नहीं है। तो सबसे पहले आज आपने खुद से पूछना है कि मैं अपना आप रब को कैसे दे सकती हूँ। फिर आप देखिए एक दूसरी चीज, सेहत, हेल्थ बंदे को बड़ी प्यारी होती है, और हदीस में आता है कि दो नेमतें ऐसी हैं, यानी इंसान के पास जब वो होती हैं तो उसकी कदर नहीं की जाती, एक सेहत और एक वक्त, फरागत, यानी टाइम बहुत ज्यादा आपके पास फ्री है। आजकल आप देखिए कि हमारे इस शहर में आई थिंक सो कि 80% स्कूल्स और जॉब्स पे छुट्टियां हुई हुई हैं कि नहीं, या होने वाली होंगी, होने वाली है ना, कहीं हुई होंगी कहीं होने वाली है, कोई कुछ भी है, कितना ज्यादा बेस्ट टाइम है इस वक्त को अल्लाह के रास्ते में लगाने का। हमें छुट्टियां होने वाली हैं तो हमने क्या प्लान बनाया है? यकीन करें मुझे अभी किसी ने पूछा कि आपने छुट्टियों में क्या प्लान बनाया, तो खैर जब मुझे उन्होंने पूछा तो मैंने कहा मेरा ये प्लान है, तो मैंने उनको सिर्फ ये बताया, वो सुन के ये सोच रही होंगी कि मैं अपने पिछलों को मिलने जा रही हूँ। यकीन करें एक एक दिन यहां से जाने के बाद जहां भी जाए वो सुबह और रात सफर में होता है। और अखीर जो पीछे कमी आती है ना, वो यही होता है, अच्छा चलो वो दावत थी उसमें नहीं जाते, खैर है वो शादी थी, अब क्या करें फिर उस शहर में, दर्स उधर जाना उधर जाना। और ये खुशी की बात होती है, इंतजार कर रहे होते हैं कि जब भी कभी अपने मुल्कों में भी आना है तो इधर उधर उधर जाना है। और मैं जब अपनी उंगलियों पे गिनती हूँ तो ये 15 दिन बहुत छोटे लगते हैं अगर काम उसके अंदर गिने तो। और अगर सिर्फ इन 15 दिनों को हम लगाएं शॉपिंग, खाना पीना, उधर खा उधर के गोलगप्पे उधर के, ठीक है सारा दिन हम दिन का काम भी कोई नहीं कर रहे होते, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक दिन भी ऐसा हो, मैंने के साथ ही जाना है जैसे छुट्टियां होती हैं उसी तरह जाना है, तो जिस दिन मैंने जाना था उसी दिन शाम को किसी का कोई मौका ऐसा था कि दर्स की बात हो रही थी तो उन्होंने हेजिटेंट किया जो हमारे साथ वाले हैं कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, आपने तो उसी दिन आना है तो दर्स कैसे होगा। तो मैंने हंस के कहा मैंने जहाज चलाना है, आप रख ले, सुबह पहुंच के अगर बीच में 2 2.5 घंटे टाइम मिल भी गया तो शाम को एक दर्स करना क्या बड़ी बात है, आप रख ले। यकीन करें जो मेरे स्केड्यूल में ये कि जाने वाले दिन से लेके आखिरी दिन तक दर्स है, चाहे वो शादी है, शादियां भी हैं बीच में 2-3, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है मेरा वो दिन जाया हो गया जिस दिन मैंने किसी को कोई बात नहीं कही। और दर्स मुराद ये भी नहीं कि रूह कुर्सी में सजा के और आप तकरीर करने को दर्स के, लेकिन ये दर्द मौजूद है कि अगर मैं कहीं जाऊं तो मैं किसी को कोई फायदा दूं, मेरे रिश्तेदार इतने प्यारे, मेरे इतने अच्छे घर वाले, क्या मैं उनको कोई अच्छी बात ना बताऊं, सिर्फ इस सोच से कि आज मैंने सिर्फ शॉपिंग करनी है, आज मैंने सैरें करनी है। तो अगली चीज जो है वो आपका वक्त है। अगली चीज जो हम अल्लाह के रास्ते में देते हैं जो हमें बड़ी प्यारी होती है वो नींद है। लिखिए किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कहाँ प्यार है नींद तुमको प्यारी है। सच बताएं क्या हम अल्लाह के लिए नींद छोड़ सकते हैं? और सुबह की नींद तौबा, न्यू बॉर्न बेबी की तरह सुबह की नींद प्यारी होती है, उससे बंदा हटना ही नहीं चाहता। और अल्लाह अपने नबी को कहते वाइज गदाउ तमिन अहली का, इसी सूरत में आप पढ़ेंगे जब गज़वे अहद का तज़किरा आएगा, कहना भी जब तू सुबह सवेरे अपने घर वालों को छोड़ के अल्लाह के रास्ते में निकल गया था तो कुर्बानियां उन्होंने दी तो दीन फैला, वक्त दिया, जान दी, माल दी। आप कहते हैं सेहत कैसे हम अल्लाह के रास्ते में दें? आप में से कई लोगों को ये भी शैतान कहेगा और शैतान भी लोगों के दिलों में डलवाता है, हाय अब तो आप मोटी हो जाएंगी, आप तो 4 घंटे बैठी रहती हैं आप तो मोटी हो गई। तो सारे भला जो यहाँ नहीं बैठते वो तो स्लिम स्मार्ट है ना, अच्छा देखो बैठे रहते हैं ना तो वो खून रुक गया और ये हो गया ना तब दर्दें शुरू हो गई। अल्लाह अकबर। फिर इसी तरह आप देखिए कि जो चीज़ हम अल्लाह के रास्ते में देते हैं जो हमें बड़ी प्यारी होती है वो हमारी औलाद है। अभी चंद दिन पहले पढ़ चुके हैं बीबी मरियम की माँ, इन्नी नजर तुलक माफी बतनी महरोरा फतकबल मिन्नी, क्या अल्लाह मैं अपने पेट के बच्चे को तेरे नाम पे करती हूँ तू कबूल कर ले। हम अपनी औलादों को अल्लाह का वफादार बनाएं, अल्लाह के दीन की खिदमत सिखाएं। मैं कहती हूँ कैसे नहीं हो सकता कि हमारे बच्चों को दीन के काम से प्यार ना, अगर हमें बताओ और इसकी रूह दियो, कितना तरस आता है हमें अपने बच्चों को फजर पे उठाते हुए। सारी रात वो जाग के पढ़ सकते हैं दुनिया की पढ़ाई के दिन, कॉलेज के दिन, जिस दिन उनको लगता है कि कुछ उनका पेपर्स है, लेकिन आप बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि हमने उनको शऊर के साथ जगवा के और उनको अल्लाह के दीन की बात सिखाई हो? और नमाज रोजा हज भी सिखा लिया है लेकिन उनको अल्लाह से अगर मुलाकात नहीं हुई तो लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू। अपनी औलादों का किबला ठीक करना है। आज दुनिया से हम चले जाएंगे तो क्या होगा? देखिए ये जो आपने भी चूड़ियां और अपने कड़े उतार के दिए, किसी ने मांगे आपसे? किस चीज ने आपको मोटिवेट किया कि आप अपनी मनपसंद चीजें और अपने माओ की और चीजों को दें? क्योंकि आपको पता है कि इस नथिंग, वो छोड़ के हमें दे गए, हमने छोड़ के किसको देना है? और चले हमारे माँ बाप ने अगर छोड़ा तो हमने तो पहन भी लिया, अगली नस्लों ने कोई पहनना? कभी सच बताएं बच्चे पहनते? बड़े फख्र से बच्चे कहते हैं यहाँ के कि हम नहीं पहनते फैंसी कपड़े और हम नहीं पहनते जेवरात, हमें तो बस डायमंड ले देना, गोल्ड नहीं चाहिए डायमंड चाहिए, है ना? लेकिन फिर हम कहते हैं कि नहीं बच्चों के काम आएगा। कई लोग हैं जैसे अक्सर लोगों के जहन में एक होता है कि जो माओ का जेवर होता है वो बच्चों के काम आता है, तो मैं कहती हूँ इससे अच्छा बच्चों के और क्या काम आना है। आपको सुनाया था खलीफा मोतसिम मुसलमानों का खलीफा था, जवाल शुरू हो चुका था, माल की मोहब्बत में चूर हो चुके थे मुसलमान हुक्मरान भी, अखीर दुश्मन ने कब्जा कर लिया, मुसलमान खलीफा को कैद में डाल दिया, 2-3 दिन तक भूखा रखा, और जब वो बिलबिलाया भूख से तो उसके सामने एक तश्त में सोने की ढेरी लगा के भेजी कि खाओ, तो उसने कहा कि ये मैं खा सकता हूँ? तो उसने कहा कि काश है खलीफा ये बात तुझे उस वक्त समझ आती जब तू खलीफा था, अगर तो मुसलमानों में इन माल दौलत की मोहब्बत ना होती तो हम कभी तुम्हारे सर पे मुसल्लत ना होते। यही अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि यरुद्दुकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम बस पूरे के पूरे अल्लाह के बन जाएं। फिर एक और कुर्बानी जो अल्लाह के रास्ते में देनी पड़ती है ना, वो दोस्तों की और मोहब्बतों की। बेकार आपका वक्त लेने और देने वाले दोस्त आपसे छटने लगते हैं जब आप मकसद ले लेते हैं। वो फोन करते हैं, आप बिजी हैं, आप कहते हैं मेरी क्लास है, दूसरे दिन आप कहते हैं टेस्ट है, तीसरे दिन कहते हैं असाइनमेंट है, आप कहते हैं वीकेंड को मिलना, रात को मिलना, वो कहते हैं नहीं तो ना सही। कितना पसंदीदा मशगला होता है लंबी फोन कॉल। कोई आप में से इसको वेरीफाई करेगा कि जब हम जिंदगी में कोई मकसद नहीं रखते तो हमें टेलीफोन टॉक कितनी प्यारी होती है? सच है कि झूठ है? और उन बातों का खुलासा क्या होता था एंड पे? उधर ये सेल लगी है, उधर ये फैशन है, उसमें ये फिल्म। अगर जरा और भी बिगड़े हुए तो फिल्मों और गानों की बातें हैं। आपका अगर दिल उदास है अपने दोस्तों के लिए, उनके लिए दुआ करें, और आपको बामकसद लोगों में से भी बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे। फिर आप देखिए पार्टीज फंक्शंस, मैं कहती हूँ इसके ऊपर तो मैं गवाही दे सकती हूँ कि आप दीन पे आ जाएं तो पार्टियां खत्म नहीं होती बल्कि ज्यादा हो जाती हैं। किबला फर्क हो गया उसका, ठीक है आप वहां जो शोपीस बन के जा रहे थे और हो सकता है वहां कुछ गलत चीजें हों, पार्टी तो आपकी हर पारे के साथ चलती है, हर सूरत के साथ आपकी पार्टियां चलती हैं, हर मौके पे खुशी गम में चलता है ना। तो सिर्फ चेंज होती है तो इंसान की एक सोच चेंज होती है। अभी चंद दिन पहले हमने सिस्टर आमना को दावत पे दिया, बेसिकली वो मेरी तरफ से थी, लेकिन जजाकल्ला खैर मेरे साथ साथी थे घर वाले, उन्होंने साथ दिया। मेरा दिल ये था कि हमने सिस्टर आमना को तो इधर इतनी दफा बुलाया ना, आती हैं देखती हैं, और उनके मुझे वो जुमले नहीं भूलते, कहती हैं कि जो कुछ दीन खूबसूरत मुसलमानों का है, अगर ये सिंगों के पास होता तो उनको किसी की जरूरत नहीं थी, उन्होंने इसको लेके पहुंच जाना था जहां मर्जी। और सच है, तो हमारी ख्वाहिश ये थी कि उनकी फैमिली को बुलाएं, उनके मियाँ उनके बच्चों, ताकि उनका भी तो एक खौफ दूर हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वीकेंड पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, और यकीन करें वो जिसको कहना चाहिए ना कि उनकी आंखें खुली की खुली थी कि मुसलमानों की दावतें ऐसी होती हैं, और वो कहीं कुछ वो तो हैरान थी कि ऐसे भी होता है। जान के मैंने बल्कि जिन दोस्त चार साथियों को सिर्फ मैंने एक ऑनर के तौर पर था कि ज्यादा मकसद हमारा ये था कि फोकस उन पे रखें, दिल तो मेरा चाह रहा था आप सबको बुला लूं, लेकिन फिर आपकी शोर शराबे में वो नहीं थे बात बनती ना, क्योंकि हमारा मकसद अब इस वक्त उनके जाहिर घर वाले हैं ना। तो हमने बहुत लिमिटेड चंद लोग थे, सिर्फ घर के ही लोग थे आप कह लें, एक आधे बंदे के सिवा। तो आपकी इन चर्चेस को हमने मैंने बुला लिया था कि चले आप भी देखें, तो आप सच बताएं कि वो कितनी खुश थी। और मैंने इनको कहा कि खबरदार अगर आप अबाया पहन के आए, बाहर तो पहन के आने हैं लेकिन आपने उतारना है, इसलिए नीचे को ठीक पहन के आइएगा। कई लोग जब अबाया पहनते हैं तो वो एक फरार का रास्ता है, कुछ नहीं नीचे पहना अबाया चढ़ा लो, ये भी जुल्म है। स्काफ मत पहना करें अपनी औरतों की महफिलों में, उसको जरा ढीला कर दिया करें। क्यों? ये लोग डर जाते हैं, कहती बाजी ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, मुसलमान औरतें इतनी अच्छी भी लगती हैं तो आपस में ऐसे। मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने खुद जान के उस दिन जबरदस्ती उसकी खुशी के लिए मैंने खूब अच्छे कपड़े पहने के जो भी है मेरे पास मैंने उसको पहनना है ताकि उसको हम वेलकम करें। और वो हैरान, कहती हमारे तो ऐसे नहीं होता, लोग मुसलमानों के बारे में कितना गलत सोचते हैं। कहती मुझे अपने साथ लगा लें बाजी। मैंने कहा पहले कुछ पढ़ तो लो। तो बहरहाल आप देखिए कि दुआ करें कि इस्लाम का दर्द हो। मैं उस दिन भी हमने एक एक काम करते हुए एक एक बर्तन निकालते हुए यही कहा था कि रब्बाना तकब्बल मिन्ना, कि हम अल्लाह तेरे लिए करें, हमारा क्या है उनसे, ना कोई हमारा इलाका मिलता, ना जुबान मिलती, ना रंग मिलता, ना ढंग, लेकिन इस्लाम की मोहब्बत कहना चाहिए कि तसल्ली नहीं हो रही थी कि हम वो क्या ना कर दें उनके लिए जो कुछ शायद अपने बच्चों के ससुराल के लिए करें। तो ये फिर एक इस्लाम का किबला बनता है ना, फिर आप खानदान बनते हैं बड़ा। मैंने फिर पूछवाया, जाहिर मर्दों में भी चंद साथी थे तो उनके हस्बैंड भी, बहुत अच्छी बातें हुई माशाल्लाह। यानी पहले बर्फ तो पिघलाओ। हमने काफिरों और अपने बीच में एक इतनी सख्त तलवार रखी हुई ना, ये काफिर ये मुसलमान, तो अल्लाह कहते हैं कि वो तुम्हें टेढ़ा कहते हैं ना, तुम उनको सीधे बन के दिखाओ, जायज चीजों में आओ वो करो। यानी बहुत बेहतरीन, और उस वक्त पूरी यानी आप सब में जितनी बातें होती हैं वो उन अकेली, मुझे मौका मिल रहा था पूरा, मैंने उनको फिर ब्रीफ किया और उनसे भी पूछा आप क्या फील करती हैं, किस तरह करती हैं। जहर के भी उनको इल्म की बहुत जरूरत है, और अगर हमने उनको इल्म ना दिया तो आप देखिए क्या मुजरिम है। हम सिर्फ लोगों के शहादा पे तकबीरात के अल्लाह अकबर के और बातें खत्म कर दें, तो बस आज का सबक पढ़ के ना आपने बेचैन होना है, घर जाके आपने सोचना है कि मैं दीन के लिए क्या कर सकती हूँ। फिर इसमें कुर्बानियों में घर है, घर खुलते हैं, दीन जब आता है आपको घर, कहीं बच्चों की क्लास है, कहीं दर्स है, अपने दोस्तों को बुलाया करें, कुछ छोटे मोटे दर्स, कोई आप खुद बात करें, कहीं कुछ सुना दिया, कहीं कुछ, यानी लोगों को इस तरह से दिखाएं कि जिसके बाद आपको लगे कि आपको तड़प है। और सबसे बड़ी मैं कहती हूँ जो आज पसंदीदा चीज अल्लाह के रस्ते में हमारी चाहिए वो स्किल्स है, हमारे अंदर क्या खूबियां हैं। आप सब माशाल्लाह जितने लोग हैं आपके पास, तो मैं कहती हूँ किसी एक बंदे की आपको बाहर से जरूरत नहीं है, आप ग्रुप्स बना सकते हैं। कौन कंप्यूटर्स में अच्छा है, कौन बोलने में अच्छा है, कौन घर का काम करने में अच्छा है, हमने नॉर्वे में ना नाम रखे हुए हैं। मैं आपको सिर्फ नॉर्वे की मिसाल ही सोच से देती हूँ कि एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। हमारे पास जो साथी हैं स्टाफ में, माशाल्लाह एक है वो बात बहुत अच्छी करती है, दूसरी का ब्रेन बहुत अच्छा है, तीसरी जो है वो हार्ड वर्किंग है। तो नाम मैं नहीं लूंगी, यहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनको पता चल जाएगा, क्योंकि हम जो बात अच्छी करते हैं हम कहते हैं कि ये हमारे स्कूल की जुबान है, जो कंप्यूटर वर्क करते हैं हम कहते हैं ये हमारे स्कूल का दिमाग है, और जो बाजियां माशाल्लाह सारा दिन सफाइयां करती रहती है हम कहते हैं ये हमारे स्कूल के हाथ पांव हैं, ये काम करते हैं। यकीन करें ऐसे लगता है कि हम पूरे एक जिस्म है, और अगर एक भी चीज हटती है तो दूसरी जगह पे दूसरा आ जाता है। तो ये टीम वर्क होता है। जब तक इस चीज को हम सामने रखकर एक इज्तिमाई काम नहीं कर सकते, नमाजें भी नहीं हमें बचाएंगी। नमाजें कोई थोड़े नहीं आज पढ़ते, आपने अभी देखा था ना हरम की तस्वीर, खच्चा खच भरा था। हज उमरे पे आज भी लोगों को बारी नहीं आती, क्या वजह है कि इस्लाम के पीछे? क्योंकि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून। मैं कहती हूँ कि ये तो एक बहुत डिक्लाइन की अलामत है कि मुसलमानों को चंदे मांगने पड़े, कि एक चंदा दे दो और हम कुछ दीन का काम कर लें। समझे, ये सोए में है, ये चंदा दे के चले जाएंगे, और किसी का चंदा कबूल नहीं हो सकता अल्लाह के रास्ते में अगर वो अपना दिल नहीं देता। आपको पता है कि जब गजवा तबूक का मौका था, बदर का था, बदर तो शुरू थी, तो कुछ मुसलमानों ने पैसे देने चाहे कि हम नहीं जाते, चीजें ले ले, तो अल्लाह के नबी ने कहा टेक इट, वी डोंट नीड इट, तुम नहीं आते तो जाओ। सूरह तौबा जब पढ़ेंगे ना, तब तक तुम वैसे बड़े मेच्योर हो गए होंगे। यकीन करें ऐसे लगता है कि हम सब शीशे के केजिस में खड़े हैं, और वो क्या खूबसूरत दौर थे। और ये चेंजेस ऐसे ही नहीं आती, इसके लिए आज जितनी जिहाद की जरूरत है वल्लाह अल्लाह के नबी के दौर में इतनी नहीं थी। चंद मुट्ठी भर लोग थे दुनिया के, आज तो चारों तरफ हमारे मीडिया का गिलगार है। चंद दिन पहले यकीन करें, मैं कहती हूँ कि शायद मुझे अल्लाह इसीलिए दिखाता है कि मैं और जलूँ और कुड़ूँ, मुझे तस्वीर टीवी के कुछ क्लिप देखने पड़े कहीं बैठे हुए। कैंट बिलीव, यानी मेरे जैसा जिसको आप कह लें कि बैकवर्ड और पेंडू मिजाज का बंदा, आज तक नहीं मैं खुद को यकीन दिला सकी कि ये हमारे मुसलमानों का चैनल है, ये पाकिस्तानी चैनल है, कोई भी था। सिर्फ झलकियां थी, कोई मैंने बैठ के ड्रामा नहीं देखा। मैं बार बार पूछ रही थी कि वाकई ये पाकिस्तानी चैनल है? जी ये पाकिस्तानी, क्योंकि उर्दू लिखी हुई आ रही थी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो अल्लाह कहता है कि या रद्दुकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन। एक तरफ ऐसे दीनदार हमने चुन लिए जो मीडिया पे आके लोरियां देंगे, और दूसरी तरफ नाच गाना टप्पे टप्पियां। यकीन करें मैं कहती हूँ ये आवाज कहीं पहुंच जाए ना तो शायद किसी का फायदा हो। सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे उस दिन टीवी की उस झलकी पे दुखी किया, औरतों का कबड्डी मैच, कैन यू बिलीव, डूब मरने को दिल कर रहा था मेरा कि मैं जमीन फटे और उसमें गिरूं, और बाप बैठ के कैमरे के सामने कह रहा है कि हमारी बेटियां खाती पीती हैं, मोटी चकड़ी हैं, इसलिए और इससे भी गंदे लफ्ज माँ भी बोल रही थी। फखर करते हैं, और जानवरों की तरह वो औरतें अपने जिस्मों के साथ, और बीच में रेफरी में मर्द खड़ा है। मुझे नहीं यकीन आया अभी भी कि ये मुस्लिम चैनल है, और ये मुसलमानों की अकल इतनी मारी गई। क्या ये आज उम्मत मुस्लिमा का मसला नहीं है? अल्लाह ताला से दुआ करें, और मैंने जो भी किसी को कुछ कहा है, किसी को बुरा लगे, तो अल्लाह मुझे भी माफ़ करे और वो भी माफ़ करें, लेकिन याद रखिए कि उम्मत का दर्द लेना पड़ेगा। अल्लाह के नबी रातों को रोया करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत, और आज तुमने पहला सबक पढ़ा चौथे पारे का, कल आपका खून और भी जलेगा। क्योंकि आज हम रोते हैं, हम दूसरों को बातें कहते हैं, लेकिन हकीकत में हमारे अंदर दीन का दर्द नहीं है। रूखी फीकी नमाजें हैं। आज सिर्फ हम मुसलमान जाग जाए ना, जितने इस वक्त शऊर के साथ जी रहे हैं, तो दुनिया का नक्शा बदल जाए। काफिर घर बैठे यूं कांपते हैं मुसलमानों से, जिन मुसलमानों में लन तनालुल बिर्रा का मफहूम समझ आ जाता है कि जीना है तो मरना है तो अल्लाह के लिए मरना है। वकैफ तकफुरून वअन्तुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि वफीकुम रसूलुहु। जरा सोचो तो सही कि ये कैसे हो सकता है कि तुम फिर कुफर करने लगो जबकि तुम्हें अल्लाह की आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं और तुम्हारे अंदर इसका रसूल मौजूद है। यानी ये बात एक नेमत के तौर पे याद दिलाई गई कि जब तक हिदायत का मौका ना मिले, कोई उस्ताद ना मिले, किताब ना हो तो और बात है, लेकिन ऐ मदीना वालों और ऐ मक्का वालों और आज के मुसलमान खास तौर पे, कि तुम्हारे पास तो सब कुछ मौजूद है। कुरान रहती दुनिया तक के लिए किताब हिदायत है, नबी की सीरत और नबी की हदीस महफूज है, एक एक लफ्ज उनका महफूज है, और तुम इन सब चीजों के होते हुए क्या गैरों की बातें मानकर तुम नाशुक्री करोगे? कई फतक फुरून के लफ्ज पे गौर करें तो हकीकत में इंसान को अपनी फिक्र लग जाती है कि क्या वाकई मैं अपने नाम के साथ ईमान वाला या मुसलमान होने का जो टाइटल रखता हूँ, क्या मुझे इसका हक भी है? गोया कि ये बता दिया कि जब कोई नेमत मिल जाए तो उसके बाद भटकना बदतरीन भटकना होता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने हल बता दिया, जैसे पूरे सबक में जो बात हो रही थी ना। अब ये है कि इतनी बातें हम जब सुनते हैं, इन सारी चीजों को हम कैसे लें, तो इसका इलाज क्या है, किस तरह से तुम अपने आप को इन चीजों के अंदर लेके आओगे। तो फरमाया कि तुम अल्लाह ताला के रसूल की उम्मत हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना प्यारा नबी दिया, किताबें तुम्हारे पास, रसूल की सुन्नत सीरत पास, अब तुमने क्या करना है। वमई या तसिम बिल्ला, और जो कोई मोहकम पकड़ ले अल्लाह को मजबूती से, आइन स्वात मीम रूट इसका होता है आसमा पकड़ना, आसिम कहते हैं पकड़ने वाले को, यानी जो मजबूती से पकड़ ले अल्लाह को, फकद हुदी इला सिराते मुस्तकीम, तो गोया के वो हिदायत दिया गया सीधे रास्ते की तरफ। ये है हल। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह को कैसे पकड़े। अल्लाह कोई चीज है जो हमारे सामने दिखे, तो यहाँ फिर मुराद क्या है कि अल्लाह के दीन को पकड़ो, और इसी की तफसीर हमारे अगले सबक में आएगी, वा तसिमु बिहब्लिल्लाह में, उस पे इधर बात होगी। लेकिन यहाँ इतनी बात जो है वो समझ आ गई कि आज फितनों के इस दौर में अगर कोई अपना ईमान और अपना दीन बचाना चाहता है, तो उसको अल्लाह के दीन को, अल्लाह की किताब को, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को मुहकम पकड़ना पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अमल की तौफीक दे। आप इसको सिर्फ ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अल्लाह की पनाह में आना बंदे को नफ्स की शरारतों से भी बचा देता है, शैतान के फितनों से भी बचा देता है, मुआशरे की खराबियां, बाज़ दफ़ा हम बुरे नहीं होते, हमारे इर्द गिर्द का माहौल खराब होता है, बाज़ दफ़ा हमारे दोस्तों में कोई एक दोस्त ऐसी हो सकती हैं कि जो हमारा मिलान बदल देती हैं, तो उस वक़्त क्या होगा। आओ अल्लाह के दामन रहमत में आ जाओ, सिराते मुस्तकीम पे आ जाओ। और आप देखिए कि दूध पीता बच्चा जब अपनी माँ के सीने से चिमटता है, तो उसको क्या लगता है कि मैं एक मजबूत किले में आ गया हूँ। हालांकि माँ खुद बीमार हो सकती है, माँ खुद भी कमजोर हो सकती है, लेकिन जरा सोचिए कि एक बच्चे को माँ के सीने से लग के जो खुशी होती है, जो कि अभी उसकी सारे फितनों से और खतरों से हिफाजत कर भी नहीं सकती। हो सकता है कोई जालिम आयर माँ की गोद से बच्चे को छीन ले, मुमकिन है ना, कोई तीर चला दे माँ की गोद में, बच्चे को तीर लग जाए, लेकिन बच्चा तो समझता है ना कि मेरी माँ मुझे बचा लेगी। तो सोचिए जब कोई बंदा अल्लाह के दामने रहमत में आता है, अल्लाह की पनाह में आ जाता है, तो फिर कितना सुकून आता होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको ये सुकून अता फरमाए। यहाँ पे सबक भी पूरा हुआ। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم